एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही शायद गंभीर भी।
हाँ, एक ऐसी चीज जिसने पिछली सदी में दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया और आज भी मतलब हम उसके साये में ही जी रहे हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की, और इसे समझने के लिए हम आज देख रहे हैं जोसेफ एम सिराकुसा की किताब न्यूक्लियर वेपन्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, जैसा नाम ही कहता है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कोशिश है कम शब्दों में इस बहुत बड़े और पेचीदा मुद्दे को समझने की।
और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? मतलब दुनिया में आज भी तनाव कम नहीं हुआ है।
सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, हथियार फैलने की चिंता है, आतंकवाद का खतरा, ये सब बातें आज भी उतनी ही सच हैं।
तो सिराकुसा की यह किताब हमें यही समझने में मदद करती है कि कैसे इंसान की एक मानवैज्ञानिक खोज उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई।
बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये राजनीति की कहानी है, रणनीति की है, और हाँ, हमारी अपनी समझदारी या शायद नासमझी की भी।
तो किताब में गहराई से उतरने से पहले जरा लेखक के बारे में बात कर लें। ये जोसेफ एम सिराकुसा हैं कौन, और इस विषय पर उनकी पकड़ क्यों मानी जाती है?
हाँ, देखिए, जोसेफ सिराकुसा एक जाने माने इतिहासकार हैं, अकादमिक हैं, ऑस्ट्रेलिया में RMIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और उनका स्पेशलाइजेशन है मानव सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। उन्होंने अपना पूरा करियर ही अमेरिकी विदेश नीति, शीत युद्ध का इतिहास और परमाणु सुरक्षा के अध्ययन में लगाया है।
मतलब वो सिर्फ कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो इतिहास और डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये हथियार तो सीधे सीधे देशों के रिश्तों से जुड़े हैं।
एकदम सही, यही उनकी खासियत है। वो दशकों का रिसर्च, शीत युद्ध की समझ, अमेरिका की सोच, परमाणु डिप्लोमेसी, इन सब को मिलाकर एक बड़ी साफ तस्वीर पेश करते हैं।
और मुश्किल चीजों को आसान बनाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये डिटरेंस है या मैड है, सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, लेकिन वो इसे आन पढ़ने वाले के लिए समझा देते हैं और ये दिखाते हैं कि ये हथियार असल में जंग लड़ने से ज्यादा जंग टालने के नाम पर, या कहिए ताकत दिखाने के पॉलिटिकल टूल्स ज्यादा बन गए हैं।
मतलब इनका इस्तेमाल न करने की धमकी ही सबसे बड़ा इस्तेमाल हो गया।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
चलिए, तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब असल में है किस बारे में? इसका मुख्य तर्क क्या है?
देखिए, ये किताब एक तरह से परमाणु युग का पूरा सफरनामा है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज की चुनौतियों तक। सिराकुसा का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक मशीन या बम नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल राजनीतिक, रणनीतिक और हाँ नैतिक शक्ति भी है जिसने दुनिया के आपसी रिश्तों को बिल्कुल फंडामेंटली बदल दिया है।
इनका असर सिर्फ लड़ाई के मैदान पर नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ा है।
हाँ, हमारे डर पर, हमारे डिप्लोमेसी पर। तो अगर हमें आज की दुनिया को समझना है, चाहे वो कोल्ड वॉर का दौर हो या आज की मल्टीपोलर दुनिया, तो परमाणु हथियारों की कहानी को समझना ही पड़ेगा।
इसके बिना तस्वीर अधूरी है।
बिल्कुल अधूरी। और किताब इसी बुनियादी सवाल से जूझती है कि भाई, विज्ञान की एक खोज ने ऐसी चीज कैसे बना दी जो पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है,
और इस चीज के साथ जीने का मतलब क्या है।
हाँ, और वो उस विरोधाभास को भी देखती है कि कैसे इन्हीं विनाशकारी हथियारों ने एक अजीब तरह से एक बड़ी जंग होने से रोके भी रखा, जिसे कुछ लोग लॉन्ग पीस कहते हैं।
हाँ, वो लंबी शांति जो असल में डर पर टिकी थी, सुनने में ही कितना अजीब है।
है तो अजीब। तो ये किताब हमें शुरू करती है फिजिक्स लैब से, जहाँ एटम के राज खुले,
आइंस्टाइन, फर्मी,
हाँ, फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सीक्रेट दुनिया, फिर हिरोशिमा नागासाकी की भयानक सच्चाई, फिर कोल्ड वॉर की हथियारों की दौड़, वो मैड वाली रणनीति, और आखिर में आज के खतरे, प्रसार, आतंकवाद। तो ये वाकई एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसका कैनवस बहुत बड़ा है।
समझ गई। तो अब इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर थोड़ा रुकते हैं। पहला अध्याय, द वर्ल्ड सेट फ्री, बम की उत्पत्ति, यहां क्या है?
यहां बुनियाद रखी जाती है शुरुआत विज्ञान से, आइंस्टाइन का E=MC², फर्मी और माइटनर के फिशन पर काम, चेन रिएक्शन का आइडिया।
ये तो हुई साइंस की बात।
हाँ, लेकिन फौरन इसमें राजनीति आ जाती है। डर था कि नाजी जर्मनी कहीं पहले बम ना बना ले।
अच्छा।
और इसी डर की वजह से आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को वो मशहूर चिट्ठी लिखी कि अमेरिका को भी इस पर काम करना चाहिए।
और यहीं से शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
जी हाँ, जनरल ग्रोव्स और वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में बहुत बड़ा, बहुत सीक्रेट मिशन। सिराकुसा यहाँ वैज्ञानिकों के मन की उलझन भी दिखाते हैं। उन्हें पता था वो क्या बना रहे हैं।
हाँ, उसका नैतिक बोझ तो होगा ही।
बिल्कुल। और फिर जुलाई 1945 का ट्रिनिटी टेस्ट, पहला परमाणु धमाका जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। परमाणु युग शुरू हो गया।
फिर आता है अध्याय 2, अ रेन ऑफ रुइन, बम इस्तेमाल करने का फैसला। हिरोशिमा, नागासाकी, शायद इतिहास के सबसे विवादित फैसलों में से एक।
हाँ, इस पर बहस आज तक चलती है। सिराकुसा दोनों पक्ष रखता है। एक तरफ दलील है कि बम गिराने से जापान पर जमीनी हमला टल गया, लाखों अमेरिकी और जापानी जाने बच गई और दूसरा विश्व युद्ध जल्दी खत्म हुआ।
लेकिन दूसरी तरफ के सवाल भी तो हैं।
बिल्कुल। क्या जापान वैसे भी हारने वाला था? क्या बम का असली मकसद सोवियत संघ को डराना था, उसे अपनी ताकत दिखाना था? सिराकुसा कोई एक जवाब नहीं देते। वो दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन पर उस वक्त कितने अलग अलग तरह के दबाव थे। असल मुद्दा यह है कि कैसे बम की थ्योरेटिकल ताकत जमीन पर एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल गई।
इसके बाद अमेरिका अकेला नहीं रहा इस ताकत के साथ। अध्याय 3, अ माइटी फोर्ट्रेस, सोवियत बम और हथियारों की दौड़।
हाँ, 1949 में सोवियत यूनियन ने भी टेस्ट कर लिया। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा शौक था। इसमें उनकी जासूसी का भी रोल था और उनके अपने वैज्ञानिकों की मेहनत भी थी।
और यहाँ से रेस शुरू हो गई।
एकदम, हथियारों की दौड़ तेज हो गई। अमेरिका ने और भी भयानक हाइड्रोजन बॉम्ब, एच बॉम्ब बनाने का फैसला किया। फिशन से फ्यूजन, किलोटन से मेगाटन।
टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी।
हाँ, और सोवियत भी पीछे नहीं रहे। दुनिया दो सुपर पावर के बीच बढ़ गई। फिर आया न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट।
ट्रायड मतलब?
मतलब जमीन से मिसाइल, हवा से बॉम्बर प्लेन और पानी से सबमरीन, तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। मकसद था सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी,
यानी अगर दुश्मन पहले हमला कर भी दे तो भी आप जवाब दे सकें।
बिल्कुल।
तबाह होने के बाद भी दुश्मन को तबाह करने की गारंटी।
और इसी गारंटी से जुड़ा है अगला अध्याय, अध्याय 4, ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ टेरर, प्रतिरोध का योग। ये शायद किताब का सबसे अहम हिस्सा है।
हाँ, ये वैचारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सिराकुसा समझाते हैं कि इन हथियारों को मैनेज करने के लिए क्या सिद्धांत बनाए गए। सबसे जरूरी था न्यूक्लियर डिटरेंस।
डिटरेंस यानी रोकना।
हाँ, परमाणु हमले के डर से ही दुश्मन को हमला करने से रोकना। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल ज्यादा था।
और इसी का हिस्सा था मैड, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आपसी सुनिश्चित विनाश। ये तो सुनने में अजीब है।
है तो अजीब। तर्क ये था कि अगर दोनों साइड जानते हैं कि लड़ाई का मतलब है दोनों की पूरी तबाही, तो कोई भी लड़ाई शुरू नहीं करेगा।
परमाणु युद्ध इतना भयानक है कि वो सोचा ही नहीं जा सकता, मतलब तर्कहीन है।
और मैड के लिए दो चीजें जरूरी थी।
हाँ, क्रेडिबिलिटी यानी दुश्मन को यकीन हो कि आप हमला करेंगे, और कैपेबिलिटी यानी आपके पास हमला करने की ताकत हो।
इस दौर में वो विचारक भी आए जिन्होंने अकल्पनीय को सोचने की बात की।
हाँ, बर्नार्ड ब्रोडी, हरमन कान जैसे लोग जिन्होंने कहा कि भले ही परमाणु युद्ध भयानक है, पर हमें उसके बारे में तर्क से सोचना होगा, रणनीति बनानी होगी। सिराकुसा दिखाते हैं कि कोल्ड वॉर की जो लंबी शांति थी वो दोस्ती पर नहीं, इसी डर के नाजुक बैलेंस पर टिकी थी।
ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, कि ये अतार्किक सा लगने वाला तर्क लगभग आधी सदी तक चला।
पर क्या ये हमेशा काम करता है? अध्याय 5, आई बॉल टू आई बॉल, क्यूबा मिसाइल संकट, यहाँ थियरी की परीक्षा हुई।
बिल्कुल। अक्टूबर 1962 के वो 13 दिन दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के कगार पर थी। वजह? क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तैनाती, अमेरिका के इतने करीब।
कैनेडी बनाम ख्रुश्चेव।
हाँ, सिराकुसा दिखाते हैं कि संकट के दौरान असल में कितना कन्फ्यूजन था, कितना तनाव था। अमेरिकी सरकार में ही बहस थी, कुछ लोग फौजी हमला चाहते थे, हॉक्स, कुछ बातचीत डव्स,
और हालात बिगड़ते गए।
हाँ, एक अमेरिकी जासूसी प्लेन मार गिराया गया, समंदर में नेवी के बीच तनाव बढ़ा। ये ब्रिंकमैनशिप थी, जानबूझकर युद्ध के कगार तक जाना, ये देखने के लिए कि दूसरा कौन पहले पीछे हटता है।
तो क्यूबा संकट से क्या सीखा गया? क्या मैड फेल हो गया था?
फेल तो नहीं, पर उसकी कमजोरियां सामने आ गईं। ये पता चला कि गलत फहमी हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है,
मानवीय भूल।
हाँ, मानवीय भूल, तनाव में, डर में इंसान गलतियां कर सकता है। कितने भी अच्छे सिद्धांत बना लो, असल दुनिया में चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तर्क की अपनी सीमा है।
इस संकट के बाद शायद दुनिया थोड़ी होश में आई। अध्याय 6 बात करता है आउट ऑफ द बॉटल, प्रसार और शस्त्र नियंत्रण। अब डर फैलने का था।
हाँ, अब दो बड़ी चिंताएं थीं। एक, प्रोलिफरेशन, यानी ये हथियार और देशों के पास ना जाएं। दूसरा, आर्म्स कंट्रोल, यानी जो हथियार हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन भी न्यूक्लियर पावर बन चुके थे।
दुनिया अब बाइपोलर नहीं रही थी।
नहीं, तो इसी को रोकने के लिए 1968 में आई एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि।
वो क्या थी?
एक तरह का सौदा।
हाँ,
एक ग्रैंड बार्गेन जैसा, जो पांच देश P5 पहले से परमाणु शक्ति थे, वो निरस्तीकरण की तरफ बढ़ेंगे। बदले में बाकी देश हथियार नहीं बनाएंगे और उन्हें शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी मिलेगी।
और अमेरिका, सोवियत ने भी आपस में संधियां की।
हाँ, साल्ट स्टार्ट जैसी संधियां, अपने हथियारों को लिमिट करने फिर कम करने के लिए। सिरकोसा साफ करते हैं कि आर्म्स कंट्रोल का मतलब फौरन निरस्तीकरण नहीं था, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट था, धीरे धीरे जोखिम कम करना।
फिर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। अध्याय 7, ए फुल ब्लोन अनार्की, शीत युद्ध के बाद की दुनिया। अब क्या बदला?
अब वो दो सुपर पावर वाला बैलेंस खत्म हो गया। माहौल ज्यादा केओटिक, मतलब अराजक और अनप्रेडिक्टेबल हो गया।
नई चिंताएं क्या थी?
एक तो लूज न्यूक्स का डर, कि कहीं पुराने सोवियत हथियार या मटेरियल गलत हाथों में ना पड़ जाए, चोरी ना हो जाए, बिक ना जाए।
और क्षेत्रीय ताकतें?
हाँ, भारत और पाकिस्तान ने 1998 में टेस्ट किए। उत्तर कोरिया एनपीटी से हट गया, उसने हथियार बना लिए। ईरान के प्रोग्राम पर शक हुआ, तो अब डर शायद ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर का उतना नहीं रहा जितना रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इनके इस्तेमाल का बढ़ गया।
और किताब का आखिरी अध्याय है द अल्टीमेट नाइटमेयर, परमाणु हथियारों का भविष्य। यहाँ बात आती है परमाणु आतंकवाद की।
हाँ, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा डर माना जाता है। सिराकुसा कहते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप के लिए पूरा बम बनाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन
डर्टी बॉम्ब।
हाँ, डर्टी बॉम्ब का खतरा असली है, यानी रेडियोएक्टिव मटेरियल को किसी साधारण बम से फैला देना तबाही और दहशत फैलाने के लिए काफी है।
तो आप बहस किस बात पर है?
बहस ये है कि क्या हमें पूरी तरह निरस्तीकरण यानी एबोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, या अभी भी डिटरेंस जरूरी है, रियलिज्म। और भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? नई टेक्नोलॉजीज जैसे मिसाइल डिफेंस, साइबर वेपन्स, ये सब इस पुराने बैलेंस को कैसे बदलेंगे? संदेश साफ है, ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इसे मैनेज करना हमारी एक स्थायी गंभीर जिम्मेदारी है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे जहन में सबसे पहले तो वही डिटरेंस वाला विरोधाभास आता है, आतंक से शांति।
हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है कि कैसे सबसे विनाशकारी हथियारों ने ही शायद तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया। ये शांति भरोसे पर नहीं, डर पर बनी थी।
दूसरा, मेरे लिए राजनीति और तकनीक का वो गहरा गठजोड़। ये हथियार सिर्फ साइंस नहीं है, ये डर, ताकत, इज्जत, राजनीति, इन सब के प्रतीक है।
बिल्कुल, जैसे ही एच बम आया या ICBM आया, सिर्फ मिलिट्री क्षमता नहीं बदली, पूरा पॉलिटिकल खेल बदल गया, रणनीति बदल गई, तकनीक ने राजनीति को ड्राइव किया।
तीसरा, प्रसार का खतरा जो लगातार बढ़ रहा है, रूप बदल रहा है। अमेरिका, सोवियत से शुरू होकर आज उत्तर कोरिया, ईरान तक, ये एनपीटी जैसी संधियों की अहमियत दिखाता है।
हाँ, चाहे वो परफेक्ट नहीं हो। और चौथा, वो मानवीय चूक का खतरा। क्यूबा संकट हमें बार बार याद दिलाता है कि सिस्टम कितने भी बना लो, इंसान गलतियां कर सकते हैं, और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो अटक जाती हैं, जैसे सिराकुसा का कहना कि परमाणु हथियार सबसे विनाशकारी उद्देश्य के लिए मानवीय सरलता की चुड़ान्त अभिव्यक्ति है, हमारी अकल और हमारी बेवकूफी दोनों एक साथ।
हाँ, या फिर ये कि प्रतिरोध के तर्क के लिए आपसी विनाश की अतार्किकता जरूरी है। ये मैड के अजीब लॉजिक को बिल्कुल सटीक पकड़ता है कि जंग रोकने के लिए आपको जंग करने को तैयार दिखना होगा।
एक और बात, परमाणु हथियारों ने बड़े युद्ध को असंभव बना दिया है और छोटे युद्धों को अनिवार्य। ये भी बहुत दिलचस्प है, अब बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती।
हाँ, प्रॉक्सी वॉर ज्यादा होते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात जो आइंस्टीन से जुड़ी है, बम ने हमारी सोच के तरीके को छोड़कर सब कुछ बदल दिया। सिराकुसा जोर देते हैं कि इन हथियारों से डील करने के लिए हमें नए ढंग से सोचना होगा। ये मिलिट्री से ज्यादा पॉलिटिकल वेपन है।
इनका असर इनके इस्तेमाल से ज्यादा इनके होने के डर में है।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
देखिए, सबसे पहले तो ये किताब हमें दुनिया में जो हो रहा है उसे समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। जब हम नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील की बात होती है, या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है,
तो हम बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है।
हाँ, हम देशों के बर्ताव के पीछे के डर, उनकी मजबूरियां, उनकी रणनीति को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। वैश्विक राजनीति की गहरी समझ मिलती है।
और जब हमारे अपने देश में सुरक्षा पर बहस होती है या हथियारों पर खर्च की बात होती है,
हम ज्यादा जानकारी के साथ सोच सकते हैं, सिर्फ सतह पर नहीं रहते।
यम्मी डिप्लोमेसी की अहमियत भी बताती है ना?
बहुत ज्यादा। एनपीटी जैसी संधियां भले ही उनमें कमियां हों, पर वो बातचीत का एक जरिया तो है। ये दिखाती हैं कि बात करना, समझौते करना टकराव से हमेशा बेहतर है, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो।
और क्यूबा संकट का सबक, मानवीय भूल वाला, वो तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने को कहता है, चाहे वो AI हो, बायो इंजीनियरिंग हो, इनके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक छोटी सी गलती के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं।
तो यह हमें ज्यादा सावधान और जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है।
हाँ बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है, वो शायद परमाणु शांति की नाजुकता है। ये कितनी भंगुर है। क्यूबा संकट ने दिखाया कि हम किनारे के कितने पास थे, और मानवीय भूल का खतरा वो हमेशा है।
मेरे लिए ये स्थायी विरोधाभास है कि कैसे विनाश के हथियारों ने ही शांति बनाई, और खतरा टला नहीं है, बस रूप बदल गया है, प्रसार, आतंकवाद। और ये कि ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ये सवाल कि क्या हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं?
और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, क्या इंसानियत वाकई एक ऐसी टेक्नोलॉजी को संभाल सकती है जिसके लिए लगभग परफेक्ट समझदारी और कंट्रोल चाहिए, खासकर जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही हो?
या ये भी सोच सकते हैं कि AI या साइबर वॉर जैसी जो नई चीजें आ रही हैं, वो इस पुराने परमाणु समीकरण को कैसे बदलेंगी? क्या ये इसे और खतरनाक बनाएंगी, या शायद कंट्रोल करने में मदद करेंगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें भविष्य में तलाशने होंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।